के द्वारा श्रील प्रभुपाद की तस्य उसकी हिरण्यकश्यपु की उग्रदंड अत्यंत भयावह ताड़ना से संविघ्ना विचलित सर्वे सभी लोकः सारे लोक सपालकः अपने प्रधान शासकों सहित अन्यत्र अन्य कहीं अलब्ध न प्राप्त करके शरणः शरण शरणम शरण के लिए ययुः पास आए अच्युतम भगवान के। अनुवाद, हिरण्यकश्यपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सभी व्यक्ति यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक पीड़ित थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी की शरण न पा सकने के कारण अत्यंत अंततः भगवान विष्णु की शरण में आए। तात्पर्य, भगवद गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुनिगण मुझे समस्त ज्ञानों समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन प्रयोजन समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभचिंतक जानकर भौतिक यातनाओं से शांति लाभ करते हैं। भगवान कृष्ण वस्तुतः हर एक के श्रेष्ठ मित्र है। विपत्ति या दुख में शुभचिंतक मित्र की खोज की जाती है और ऐसे ही परम शुभचिंतक भगवान श्री कृष्ण है। अतएव विभिन्न लोकों के सारे निवासी अन्य कोई शरण न पाकर अपने परम मित्र के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण खोजते रहे तो किसी प्रकार के भय या कोई कारण नहीं उठता। कहा गया है कि यदि जल में तैरते हुए कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहे तो वह निस्संदेह मूर्ख है। इसी प्रकार विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह मूर्ख है, क्योंकि उसके प्रयास सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। हर परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करे, तब किसी प्रकार का भय नहीं होगा रहेगा। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां स्वगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिरण्यकश्यप द्वारा दिए गए कठोर दंड से सभी व्यक्ति यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक पीड़ित थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी की शरण न पा सकने के कारण अंततः भगवान विष्णु के शरण में आए। तो दोनों ओर प्रॉब्लम चल रही है। एक जगह हिरण्यकश्यप वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, पिछले वर्ष में हमने देखा है, हताश हो गया है इंद्र तृप्ति करने के कारण, करने की चाह के कारण, बहुत आवर्जित करने के कारण उसको उतना सुख नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर जो अन्य लोकपाल थे, सिर्फ पृथ्वी के नहीं लेकिन स्वर्ग के नरक के और सभी जगह के, उनको भी परेशानी हो गई और उनको इतनी पीड़ा हो रही है और उसके कारण अंततः वो क्या सोचे, बहुत प्रयास करने के कारण कोई किधर शेल्टर नहीं मिला, उनको आश्रय नहीं मिला, तो भगवान के आश्रय में गए वो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर गीता में से श्लोक करते हैं, कोट करते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये सब लोकपाल थे, वो शांति चाहते थे और हिरण्यकश्यप ने पूरा त्रस्त कर दिया था उनको। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी की शरण न पा सकने के कारण, तो उसका मतलब उन्होंने कोई अन्य शरण पाने का प्रयास किया है, डायरेक्ट विष्णु के शरण में नहीं आए, भगवान कृष्ण के शरण में नहीं आए, और उसके कारण क्या हो रहा है, उनको ज्यादा ताप हो रहा है। और प्रभुपाद जी वही पॉइंट को लेकर प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ये सभी के भोक्ता सुप्रीम एंजॉयर, ये अगर हमें समझ में आए, सर्वलोक महेश्वरम सभी लोकों के ईश्वर नियंत्रक है, कंट्रोलर, अनसूदन सर्वभूतानाम और जो फ्रेंड है, मित्र है, सुहृद है, मित्र नहीं हो, सुहृद है, तो सुहृद सभी लोगों के है, लोग नहीं प्राणी मात्रा के भी है, पशु पक्षियों के भी है। ये तीन चीज जिसको समझ में आती है वो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद जी अक्सर कोट करते थे, लोग शांति को ढूंढना जाते हैं बाहर, ओम शांति शांति शांति, ये कोट करते हैं और बहुत बड़े बड़े पीस रैली निकालते हैं बाहर कि हमको शांति चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए, उससे छुटकारा चाहिए, लेकिन शांति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक प्रभुपाद बोलते कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड कांट कम अनलेस यू डोंट एक्सेप्ट यूनिवर्सल फादरहुड, जब तक हम सुप्रीम भगवान, यही हमारे पिता है, जो भगवान है हमारे पिता है सभी के, तब तक हमको शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। क्योंकि बच्चे रहते हो तो झगड़े करेंगे एक दूसरे में, लेकिन एक पिताजी रहे तो सबके साथ में हो, साथ में रहेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आती है कुछ ऐसे, हाँ तात्पर्य में और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि एक कुत्ता समुद्र में जा रहा हो, तैर रहा हो, और उसकी पूंछ है, और वो पूंछ को पकड़ के कोई अगर समुद्र तैर जाने का ना, पार करने का कोई प्रयास करे, तो ये मूर्खता है। तो प्रभुपाद जी इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? अगर कोई जीवात्मा भवसागर पार करने की कोशिश कर रहा है देवी देवताओं की शरण लेकर, तो उसी प्रकार है, उसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है कुत्ते का इस समुंदर में, उसके ऊपर आधा किलो का अगर बोझा चला जाए तो डूब जाएगा वो। तो यहाँ पर 7 किलो का आदमी अगर पकड़ ले उसको, उसकी पूंछ को, तो आदमी भी चला जाएगा, कुत्ते को भी नीचे लेकर चला जाएगा। तो जीवात्मा जो है वो जीवात्मा को भगवान की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सक्षम है सभी जीवात्मा को अभय प्रदान करने के लिए। तो अक्सर देखा जाता है जब कभी भी प्रॉब्लम आती है जीवन में, तो सर्वप्रथम चीज जो होती है वो हम भगवान को भूल जाते हैं, और अन्य किसी चीजों का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। शायद फलाना व्यक्ति मेरे साथ दे, या फलानी चीज मुझे साथ दे, या कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस मेरा सब कैसे तो भी जुगाड़ बन जाए तो मैं बच जाऊं इस प्रॉब्लम से, लेकिन भगवान की शरण में अक्सर जीवात्मा नहीं जाता है। और बाकी के प्रयास, अथक प्रयास करने के बाद अगर उसको समझ में आया कि भाई मुझे कुछ हो नहीं रहा है, किसी से शेल्टर नहीं मिल रहा है, किसी से आश्रय नहीं मिल रहा है, तो दूसरी चीज वो क्या करेगा? खुद के भरोसे लेगा पूरा, चलो अभी मैं प्रयास करता हूं कि मेरे बलबूते पे सब चीजें रोकने का प्रयास करता हूं, कैसे दुख मेरे जीवन में नहीं आएंगे, कठिनाई मेरे जीवन में नहीं आएंगे, तो खुद प्रयास करने का बहुत प्रयास करता है वो। और उसके बाद जब उसको समझ में आता है कि अरे मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, मेरा शक्तिमान नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, जो कठिनाई जो आ रही है वो पहाड़ के समान है और मैं चूहे के समान हूं, तो फिर वो अगर बुद्धिमान हो और अगर सही में कृपावान हो, जिसके ऊपर कृपा हुई हो, तो भगवान की शरण में जाता है। एक कहानी आती है, वो बताते हैं कि ये कहानी जनरली इसके लिए बताते हैं कि जीवात्मा को अपने जान से प्यारा कोई नहीं है, और इससे हम दूसरी सीख ये भी सीखते हैं कि वो कैसे खुद का प्रयास करता है बचने के लिए। तो एक बंदर रहते, बंदरिया रहती, और वो बंदरिया वो उसको पानी में, पानी के टब में डाल दिया जाता है पूरा, और उसके हाथ में उसका छोटा बच्चा भी रहता है। तो शुरुआत में वो पूरा प्रयास करती है बचने का, पानी से हाथ लगाकर ऊपर चढ़कर जाने का प्रयास करती है, लेकिन पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता जाता है। तो अथक प्रयास करने के बाद समझ में नहीं आता उसको कि अरे कैसे बचाए, छोटे बच्चे को बचाए या मुझे बचाए, या पानी तो ऊपर जा ही रहा है। तो तुरंत वो क्या करती है, हाथ पे ऊपर बच्चा ले लेती है और बचाने का प्रयास करती है फिर भी बच्चे को। और उसके बाद में जब पानी उसके यहाँ तक आ जाता है पूरा, तो क्या करती है, उसका दम घुट जाता है, अभी मरने में आने वाली है, तो क्या करती है, बच्चे को लेके नीचे रख देती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है वो। तो खुद को बचाने का प्रयास बहुत ज्यादा प्रबल होता है जीवात्मा को, खुद से ज्यादा प्रेम किसी और पे नहीं है। तो ऐसा चीज होता है। और अधिकतर की जो सामाजिक मित्रता रहती है, जो इस दृष्टि पर रहती है, जो उसके केंद्र में भगवत भक्ति नहीं है, और जो भक्ति की मित्रता नहीं है, वो मित्रता कैसी रहती है? अगर आप मेरे कुछ काम पे आए तो मैं आपको कुछ काम करूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूअर्स। तो अगर हम एक दूसरे के लिए मदद करते हैं तो ये हम एक दूसरे के मित्र है, नहीं तो हम दूसरे के एक दूसरे के मित्र नहीं है। तो ये हम देखते हैं, पहले 1960-70 में एक बहुत जय श्री श्री राधा माधव की जय। तो 1960-62 में चीन का युद्ध हुआ था, 71 में भी हुआ था, चाइना उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं चाइना को, चाइना ही बोलते ना, चीन। तो चीन का जब युद्ध हुआ था उसके पहले बहुत नारे लगते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जब वो बात आई कि ये राज्य किसके पास जाएगा, तिब्बत वो किसके पास जाएगा, तो उसके लिए पूरा एक रात में हमला बोल दिया हिंदी चीनी भाई भाई का, तो दुश्मन बन गया। तो जब खुद का स्वार्थ आ गया देश देश में, तो क्या कर दिए, धावा बोल दिए एक दूसरे के ऊपर, बोले अभी कौन सा मित्र और कौन सा क्या, भाई भाई नहीं कुछ नहीं है, सब भूल गए। और जो भौतिक मित्रता रहती है उसके ऐसे अलग अलग पहलू रहते हैं, वो जो सिचुएशंस, जो जीवन में हमें सिचुएशन आती है, अलग अलग सिचुएशन के साथ बदलती रहती है वो। जैसे कि हमने हाल ही में भगवद गीता जो पहला अध्याय चल रहा है उसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे कि द्रोणाचार्य और द्रुपद इनके अंदर की शत्रुता और मित्रता, जब वो दोनों गुरुकुल में थे तो वो एक दूसरे को बोलते थे कि अरे हम इतने घने मित्र है, दिन रात साथ में रहते थे, हर विद्या साथ में सीखते थे, हर विद्या का प्रयास साथ में करते थे वो। और सीखने के बाद द्रुपद ने बोला था कि तुम मेरे मित्र हो, तुम अच्छे ब्राह्मण हो, तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हें कुछ आपत्ति आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको मदद करूंगा, क्योंकि मैं तो राजा का लड़का हूं, मेरे पास धन संपत्ति है, जितना चाहे मैं मेरे प्रयास से करूंगा, आपका मदद करूंगा। तो गुरुकुल की शिक्षाएं खत्म होने के बाद द्रोणाचार्य गए अपनी ब्राह्मण शिक्षा अर्जित कर लोगों को ज्ञान बांटने के लिए, यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह अपना कार्य चालू कर दिया उन्होंने। और जो द्रुपद थे वो राजा बन गए, और राजा बनने के बाद वो बड़े व्यस्त हो गए, हम ऐसा ही बोल सकते, उनका अहम भाव भी बढ़ गया होगा, क्योंकि इतना सारा नियंत्रण करने पड़ गए, उनके हाथ में बहुत सारा चीजें आ गए, रिसोर्सेस आ गए कंट्रोल करने के लिए। और ये जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा प्रभाव है माया का, आघात है माया का। प्रभात बोलते लास्ट नेयर ऑफ माया, व्हाट इज दैट, आई एम गॉड। कोई चीज नियंत्रण करने के लिए मिल गई तो तुरंत जीवात्मा सोच लेता है ये भी ठीक है, अभी तो मेरा अस्तित्व जम गया है, अभी मैं बॉस बन गया हूं, अभी मैं भगवान बनने का सीढ़ी चढ़ रहा हूं, मैं बन जाऊंगा भगवान। तो ऐसे ही द्रुपद का भाव हो गया होगा द्रोणाचार्य के खार, जब वो छोटा अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा को पीने के लिए दूध भी नहीं था, तो कृपी जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी उन्होंने बोला, अरे आपके मित्र तो इतने बड़े राजा है, जाकर उनसे कुछ मांगो, हमारा जीवन का समस्या है ये। तो जब द्रोणाचार्य गए उधर, तो द्रुपद राजा ने उनको धिक्कार दिए, बोले मित्रता क्या, मित्रता की बात कर रहे हो, मित्रता तो समान में होती है, आप ठहरे गरीब ब्राह्मण, मैं ठहरा बड़ा राजवान राजा, तो हमारे में क्या कुछ साम्यता नहीं है, तो इसलिए मित्रता नहीं हो सकती है। तो ये देखिए कैसा बदल पड़ गया। और दूसरी ओर ठीक है, आपने मेरी पूर्ति नहीं की, इसलिए फिर द्रोणाचार्य को भी बहुत गुस्सा आया। द्रोणाचार्य क्या बोले, ठीक है मैं आपको मेरे ब्रह्म ज्ञान से बता देता हूं कि मैं भी कौन आदमी हूं। उन्होंने पांडवों को सिखाया, पांडवों को निपुण किया धनुर्विद्या में, उनको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगे, जाओ द्रुपद को कैद करके लेके आओ। तो द्रुपद से उन्होंने युद्ध किया, ललकारा द्रुपद को, उन्होंने अरेस्ट करके द्रोणाचार्य के सामने लेके आए, और द्रोणाचार्य ने उनको बोला ठीक है मैं माफ कर देता हूँ। तो फॉर जो राजा रहता है वो राजा को अनादर जो रहता है वो आदर से, आदरित होने के बाद जो अनादर होता है वो मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है। तो उसने और दूसरा इसने यज्ञ चालू किया, क्या यज्ञ किया कि द्रोणाचार्य के जिससे मृत्यु हो ऐसा मुझे संतान प्राप्त हो। तो देखिए कैसी श्रृंखला बढ़ते जा रही है, अगर एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब तक भगवान हमारे केंद्र बिंदु में नहीं है तो वो जो मित्रता होती है वो मित्रता कुछ काम की नहीं होती। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कभी कभी ऐसी मित्रता निभाई भी जाती है लेकिन उसका अंततः फल परिणाम जो सही नहीं होता है। दूसरी मित्रता हम देखते हैं ऐसे ही भौतिक स्तर पर जो कि कर्ण में और दुर्योधन में। कर्ण की बात जो थी, कर्ण जब युद्ध में ललकारने के लिए आया पांडवों को, मतलब कि आपके पास ही इतने बड़े बड़े ये नहीं है, जब उनकी पूरी धनुर्विद्या और सब विद्या सीखने के बाद सभी प्रजाजन को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हमारे युवराज अच्छे सीखे हुए हैं, इसलिए उनके धनुर्विद्या और सभी विद्याओं का प्रदर्शन हुआ था और सभी हस्तिनापुर के लोग आए थे देखने के लिए। और अर्जुन आया, अर्जुन ने पूरा एकदम अलग अलग अस्त्र की संकलना की और वहां पर लाके उनको प्रदर्शन किया, वायव्य अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, अंतर्धान अस्त्र और सभी वस्त्रों का ऐसा आविष्कार बताने के बाद सब जन चकित हो गए और खुश हो गए, बोले चलो ऐसे अर्जुन है और अर्जुन जैसा कोई योद्धा नहीं है। तो उसी समय दूसरी ओर से कर्ण ने ललकारा जोर से, बोले रुको ये सब चीजें मैं भी बता सकता हूँ। और वो युद्ध में उतर गया, वहां पर रणांगन में अंगन में आ गया और उसने अपने कौशलता बता दी। जो कुछ अर्जुन ने बताया था वो सभी कुछ चीजें कर्ण ने भी बताई। तो उसी समय तुरंत द्रोणाचार्य, जिनको नीति ज्यादा पता थी, वो तुरंत बोले, अरे कर्ण ने पहले उसको ललकारा अर्जुन को कि क्या आप मेरे साथ युद्ध करोगे आप? तो द्रोणाचार्य बोले कि नहीं, युद्ध समान में हो सकता है, ये राजपुत्र है और आप कहाँ से, आप कौन से राजा है बताओ। तो उनको बहुत बड़ा ये अपमान लगा। और उसी समय दुर्योधन ने इसी चीज का हाथ में ले लिया कि चलो यही एक प्यादा है जिसको मैं अगर यूज करूंगा युद्ध में तो मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ, नहीं तो मैं अर्जुन को नहीं हरा सकता हूँ। तो तुरंत उनको अंगदेश का राजा बना दिया और बोले आप तो मेरे मित्र हो। तुरंत जो कर्ण है उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसको लगा रहे मेरे तो कुछ पता नहीं है मेरा क्या एग्जिस्टेंस है, मुझे एक क्षण में राजा बना दिया आपने। तो तुरंत रो रो के बोल रहे थे वो कि हे दुर्योधन, मैं आपकी मित्रता कैसे निभाऊं, मैं आपको मित्रता के बदले में क्या दूं? तो दुर्योधन बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे आपकी सिर्फ मित्रता ही चाहिए। और इतने वो बीत चुके थे इनको दुर्योधन को कि पता नहीं चल रहा था। हालांकि दुर्योधन ने भी ऐसे ही ट्रीटमेंट किया था उनके साथ, कि वो कहानी आती है महाभारत में, एक बार दुर्योधन शिकार करने गए थे बाहर और दुर्योधन की पत्नी वो चौसर पास खेल रही थी। तो खेलते समय कर्ण उधर आ गया, देखने लग गया उधर कि भाई क्या हो रहा है अंदर, इधर दुर्योधन को मिलने आया, दुर्योधन तो नहीं था वहां पर। दुर्योधन नहीं था तो देखा पत्नी बैठी है चौसर खेल रही, तो वो बोले भाभी बोलते हो, बोले चलो खेल लिया जाए, ऐसे ही खेल खेलेंगे। तो खेलते खेलते दुर्योधन की पत्नी का डिफीट हो रहा था, वो हार रही थी, तो वो उठ के चले जा रहे थे, बोले नहीं मुझे कुछ रसोई में काम है मैं जा रही हूँ। तो उसी क्षण में कर्ण ने उनका एकदम साड़ी पकड़ लिया, बोले नहीं नहीं आप तो ऐसा आधा गेम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और उनके जो साड़ी के जो गिरे मोती जो गिरने लग गए थे और उसी क्षण पर दुर्योधन की एंट्री होती है वहां पर राजहंसार पैलेस में। तो देख के ही कर्ण के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको लगता है कि अभी मैं मेरा जो मित्र है मुझे गलत समझ लेगा, अभी वो मुझे दंडित कर देगा और मेरी मित्रता खत्म हो जाएगी, मेरा ऐसा कुछ गलत भावना नहीं थी। तो फिर भी दुर्योधन आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि हे मित्र मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझ सकूंगा। तो ये सोच के उसका और ही जो कृतज्ञता है वो बढ़ जाता है दुर्योधन के प्रति। और आखिरी में जब युद्ध का समय आता है उस समय स्वयं कुंती ने बताने के बावजूद भी, स्वयं कृष्ण ने बताने के बावजूद भी कर्ण ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मैं गलत साइड में हूं। वो बोलता है कि हे कृष्ण मुझे पता है कि पांडव बहुत गुणवान है, शीलवान है, वो धर्म के साइड में है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बंदा हूं, वो नैतिकता से बन गया था कि मेरी मित्रता जो है वो मित्र ने मुझे बचाया है, उसने मुझे नमक खिलाया है, मुझे खाना खिलाया है अभी तक, लेकिन जो नैतिकतावादी है वो भूल गया था कि जो नमक और जो खाना जो दुर्योधन को भी बना रहा था वो उसने नहीं बनाया था, वो भगवान कृष्ण ही उनको दिया था। तो जो भौतिक तरह के जो मित्रता होती है वो मित्रता की सीमा होती है, वो उसकी सीमा एक जगह रुक जाती है। उसके विपरीत हम देखते हैं मित्रता क्या होती है, जो फ्रेंडशिप, तो चार प्रकार के बोलते हैं संस्कृत में, चार प्रकार के शब्द आते हैं उसको, बोले मित्र, बंधु, मित्र सखा, बंधु और सुहृद। सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद। तो जो मित्र होता है वो औपचारिक तरीके से, जैसे हम एक दूसरे को मिल गए बाहर चलते घूमते फिरते हुए, सेकेंड हो गया, कहाँ से हो, कैसे हो भाई, बातचीत हो रही है, तो हमारी मित्रता बढ़ गई, हम मित्र बन गए। लेकिन सखा, सखा बोले तो थोड़ा पास में, जिनको हम बचपन से जानते हैं खेलते कूदते साथ में, वो हमारा सखा हो गया। लेकिन ऐसे अनेक सखाओं में से एक ही जो रहेगा वो बंधु बनेगा। बंधु क्या है, जैसे मेरे भाई समान है, तो जैसे हम इनको बोल सकते दुर्योधन को और कर्ण को, ये बंधु समान थे एकदम, कि एकदम अच्छे मित्र, वो बंधु है। लेकिन सुहृद, सुहृद एक ही है, वो है कृष्ण। सुहृदम सर्वभूतानां, वो हमारे हृदय में बैठे है, स्थित है, और वो हमारे मित्र है। हम इच्छा करते से ही वो पूर्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारे इच्छा करने की स्थिति में भी वो कृष्ण जो परमात्मा रूप में हमको जान लेते कि ये कौन है, ये क्या है, ये कैसा है, इसको क्या क्या चीज की जरूरत है। इसके बहुत सारे उदाहरण तो है, इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण की पूरी जो लीलाएं हैं और जो कुछ कर्तव्य, कर्तव्य तो नहीं होते भगवान की, लीलाएं होती है, जो कुछ लीलाएं हैं वो सभी इसी बात का प्रतीक है कि वो कैसे सुहृद है भगवान सभी जीवाओं के, सभी जीवात्माओं के। सुहृदम सर्वभूतानां, तो भगवान हर समय पर जीवात्मा के भला चाहते हैं। जैसे कि हर एक लीला में उनको सब गुणता में, गुण में भगवान का एक गुण बहुत ही ये किया जाता है, उसका सराहना की जाती है, वो भक्त वत्सलता। भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बांधे जाते हैं, जो किसी से बांधे नहीं जाते ऐसे, क्योंकि उनके एक कारण, एक गुणों के कारण वो भक्त वत्सल। ये भक्त वत्सलता जो है ये प्रतीक है कि वो सुहृद है सभी जीवात्माओं के। ये हम देखते हैं जो गोवर्धन लीला हुई थी, अभी गोवर्धन लीला में भगवान सभी के सुहृद थे, जो सब ब्रजवासी थे उनको शुरुआत में भगवान ने बोला था कि मैं ये क्या कर रहे हो आप, गोवर्धन की पूजा कर, ये इंद्र की पूजा क्या कर रहे हो, पूजा क्या कर रहे हो नंद बाबा। तो नंद बाबा कुछ बताया नहीं, बोले नहीं नहीं बहुत समय कम है, हमें बहुत सारी पूजा करनी है, आप चुप रहो, आप छोटे बालक हो। तो कृष्ण बोलते हैं ये बात ठीक नहीं है, घर वालों को तो सब बातें बताना चाहिए, मैं तो आपके घर वाला हूँ, आपको आपने बतानी चाहिए सब चीजें क्या है, मुझसे क्या छिपा रहे हो। तो नंद बाबा बताते कि देखो जो बारिश होती है वो इंद्र की वजह से होती है, और उसके लिए हमने आभार देने के लिए, धन्यवाद मानने के लिए ये सब पूजा, इंद्र पूजा करनी पड़ती है, हर साल हम करते हैं, इसके लिए बारिश आती है, बारिश की फसल आती है, फसल की वजह से हम सब लोग भोग लगाकर प्रसाद ले सकते हैं, गैया खा सकती है, सब कुछ होता है। तो कृष्ण को समझ में आता है, कृष्ण इंद्र के भी सुहृद थे उस समय, क्योंकि उनको पता था कि मेरा जो भक्त है वो थोड़ा गर्वित हो गया है, उसका गर्व हरण करना है, इसलिए भगवान ने क्या किया, गोवर्धन लीला की पूरी संकलना की है। बोले नहीं नहीं आपको इंद्र पूजा करने की जरूरत नहीं है, कुछ आप मेरी बात मानो, गोवर्धन सबसे हमारा अच्छा हितैषी है, गोवर्धन की वजह से हमारे सब गायों को घास मिलती है, हमें खेलने के लिए जगह मिलती है, उसके ऊपर जो ये है बारिश आती है पानी आता है उसकी वजह से, क्या बोलते उसको, वाटरफॉल्स, झरने, वो झरने की वजह से हमें पानी मिलता है, पेड़ पौधे की वजह से उसको छाया मिलती है, तो गोवर्धन हमारा उद्देश्य है, गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए। और जो ब्रजवासी थे उनका जो श्रद्धा थी, उनका जो निष्ठा थी भगवान कृष्ण में, वो इतनी अगाधार थी कि वो तुरंत मान गए। चलो बोल दिया मान लिया, ऐसे नहीं कि छोटा बच्चा क्या बोल रहा है, बोले ठीक है गोवर्धन की पूजा के लिए लग जाओ। और नंद बाबा ने बोला चलो अभी गोवर्धन की पूजा करनी है, तो सब ब्रजवासी ने भी मान लिया कि चलो गोवर्धन की पूजा करनी। उन्होंने नहीं बोला अरे क्या है छोटे बच्चे के बात में आ गए आप और मान ऐसा कर रहे हो, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, सब गए गोवर्धन की पूजा किए। गोवर्धन की पूजा होते से इंद्र की सीमा नहीं रही, यू नो उसका अहंकार चूर चूर हो गया था पूरा। उन्होंने पूरे बड़े बड़े बादल बुलाए, संवर्धक जो संहार के समय आते हैं उन बादलों को लाके पूरा वर्षा किया जोर जोर से, ऐसे बोलते कि एक बूंद नहीं गिर रहा था, मानो पिलर के समान पानी पानी गिर रहा था वहां पर जोर से। और पूरे वजह से पूरा जो ब्रज था पूरा पानी मानी में तैर गया था, पूरे उनके छोटे छोटे घर थे, गैया थी, पानी में बहने लग गई। तो भगवान कृष्ण को समझ में आया सब क्या चीजें चल रही है, उन्होंने जाकर गोवर्धन उठा दिए। और गोवर्धन उठा के सभी ब्रजवासी को बोले कि आप सब मेरे शरण में आ जाओ, यहाँ पे गोवर्धन के शरण में आ जाओ। तो सभी ने विश्वास कर लिया ये गोवर्धन गिरेगा तो नहीं। सब अंदर आ गए और वहां पर अपनी अपनी सहायता से अपने अपने जो प्रेम में ही सेवा से अपना अपना कर रहे थे। उन्होंने कुछ गोपाल लोगों ने काठी लगा दिया अंदर से नीचे से, बोले अरे कृष्ण अगर थक गया तो। और सुदामा मधुमंगल वो बोलते कि अरे डरो नहीं, मेरे ब्रह्म तेज की वजह से गोवर्धन हवा में तैर रहा है। और ये सुदामा ही बोलती है कि बेटा कृष्ण लाला कृष्ण कुछ लड्डू खा लो, थक गए होगे, कितने देर से खड़े हो आप पैसे पकड़ के, गैया सब आती है उधर। तो ये सब कुछ वो इंटेंस लविंग अट्रैक्शन, जो लविंग रिलेशनशिप हो रहा था भगवान में और भक्तों में, साथ साथ में जो इंद्र थे उनके भी भगवान हितैषी ही थे। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ ब्रजवासियों से प्रेम कर रहे थे, लेकिन जब देखा जो मेरे मित्र जो मेरे भक्त है इंद्र जो मेरी सेवा कर रहे हैं उनको गर्व आ गया है, तो उसका गर्व हरण करने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान गर्व कभी प्रसन्न नहीं करते अपने भक्तों के हृदय में। जब सबसे श्रेष्ठतम भक्त है गोपिया, उनको गर्व हुआ है, ऐसे हम भागवत में सुनते हैं भक्तों से कि कृष्ण सिर्फ हमारे साथ में ही है, ये गर्व होने के होते से ही तुरंत कृष्ण जो है वहां से निकल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो सभी के हितैषी है और हर समय में हितैषी है, ऐसा नहीं कि आज हितैषी है कल नहीं है। हाँ तो ये यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में एक जगह यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण में शरण खोजते हैं रहे तो किसी प्रकार का भय का कोई कारण नहीं होता। तो जैसे हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, कृष्ण को जैसे ही भूल गया तो भोगवांछा करता है और निकटस्थ माया तारे झपटिया तारे, उसको पकड़ लेती है माया। तो जैसे हम कृष्ण की शरण छोड़ देते हैं वैसे ही माया है पकड़ लेती है, और माया बहुत शक्तिशाली है। माया पहले आवरण करती है जो मोह का काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य सद्गुणों से आवरण दे देती है, और उसके ऊपर से प्रक्षेपात्मक शक्ति डाल देती है, तीन गुण डाल देते हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। तो उससे वो जीवात्मा त्रस्त हो जाता है, मानो जैसे किसी व्यक्ति को इस दरी के नीचे दबा दिया गया हो, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा है चारों साइड में, और ऊपर से उसको पीटा जा रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या उसकी अपनी बुद्धि लड़ाकर कुछ अच्छा डिसीजन ले सकता है अपने जीवन में? नहीं। तो यही माया का प्रभाव होता है इसके ऊपर। तो इसके विपरीत में हम दूसरी एक देखते हैं जो था द्रुपद और द्रोणाचार्य की कहानी, और दूसरी और जो कथा थी पास्ट टाइम है वह सुदामा और कृष्ण का। वो दोनों भी कैसे थे, गुरुकुल में थे, और गुरुकुल में रहने के बाद घने मित्र थे, उन्होंने बहुत सारी मस्तियां की साथ में, कभी कभी मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, कलाएं सीखते थे, रात में साथ में प्रैक्टिस करते थे। एक बार तो वो दोनों गुरु ने जो ये बताई थी, सेवा दी थी कि जाओ आप लकड़ी लेकर आओ बाहर से। वो लकड़ी लेकर आने के लिए वो दोनों गए थे जंगल में। जंगल में जाने के बाद बहुत घनी वर्षा हुई थी वहां पर, तो रात में वो नहीं आ पाए, लौट नहीं पाए थे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह सांदीपानी मुनि ने बहुत सारे शिष्यों को भेज दिया, बोले जाओ देख कर आओ कहाँ है कृष्ण और सुदामा। तो देखे तो वो पेड़ के नीचे उधर बैठे थे बहुत सारी लकड़ियां लेकर, और अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे। तो जो सही मित्रता है वो ऐसी है जो गुरु का जो सेवा है वो हमारे हाथ में रहता है, आंख में रहता है, और एक दूसरे के सहाय करते हुए हम गुरु की सेवा करते हैं। क्यों गुरु की? क्यों? क्योंकि गुरु एक शुद्ध प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है भगवान के, और वो भगवान हमारे जीवन में दर्शाते हैं, भगवान के गुण हमारे जीवन में दर्शाते हैं। तो इसीलिए भगवान की साक्षात अनुभूति होती है गुरु के माध्यम से हमें। तो इसलिए गुरु की सेवा में लगे रहे और भगवान के लिए प्रार्थना करते रहे और भगवान के शरण में रहे, तो सभी लोग को जो मित्रता का एहसास होगा कि सच्ची मित्रता क्या है, वो मित्रता का एहसास होगा। तो जो सुदामा और कृष्ण थे वो लौट आए रात में, सुबह सुबह दूसरे दिन सुबह लौट आए। लौट आने के बाद में जब वो बिखर गए, ब्राह्मण सुदामा ब्राह्मण चला गया अपने कार्य में लग गया वापस, सृजन वाजन बटन बटन दान परिग्रह, और कृष्ण बड़े राजा बन गए और वो द्वारका में गए, द्वारका के बड़े द्वारकाधीश बन गए। तो यहाँ पर भी सेम अवस्था हुई थी, जो ब्राह्मण की सुदामा ब्राह्मण की पत्नी थी उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए अच्छा जगह नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भूखे रहते थे दो तीन दिन। तो सुदामा ब्राह्मण की पत्नी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जाओ अपने मित्र के पास, हमने सुना है कृष्ण सभी के सुहृद है, तो उनसे जाके कुछ मांग लो, हमारे लिए नहीं लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए मांगो। शुद्ध भक्ति में अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो उसमें जीवित रहने की जो इच्छा है वो शुद्ध भक्ति के खिलाफ नहीं है, वो पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। तो इसके लिए उनको भेजा गया था। तो वो बोले ठीक है मेरी पत्नी तो मुझे भेज रही है, लेकिन वो एक बहाना बन गया उनको, बोले चलो मैं कृष्ण को मिलूंगा, और कृष्ण उनसे मिलने के बाद उनके साथ मेरा आदान प्रदान हो, इसी के कारण वह चले गए भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। और जब द्वारका पहुंचे तो द्वारका पहुंचने के बाद उन्होंने एकदम हक्का बक्का हो गए, यहाँ पे लोग कितने खुश हैं, कितने धनी हैं, कितने संपन्न हैं, और इन सभी लोगों के साथ में कृष्ण कितने बड़े होंगे। तो बड़ा गेट देखा उन्होंने, वहां पे द्वारपाल खड़े थे एकदम बड़े बड़े। तो वहां जाने के बाद बोलते कि मुझे कृष्ण को मिलना है। तो बोले आप कौन हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ सुदामा। तो उन्होंने ऐसे घूर के देखा उनको, बोले ठीक है बताते हैं आपको, और वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो कृष्ण को बताया होगा उन्होंने, तो बाहर सुदामा खड़ा था और उन्होंने राह देखा, आवाज देखा कि बहुत अंदर से आवाज आ रही है, बहुत लोग दौड़ते दौड़ते दरवाजे की तरफ आ रहे हैं। तो डर गया बहुत ही, उसको लगा अरे कोई सैनिक लोग तो नहीं आ गए मुझे पकड़ने के लिए, अभी क्या होगा मेरा। जैसे दरवाजा पट खुल गए तो देखा कृष्ण स्वयं दौड़ते हुए आ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आ गए और कृष्ण के पास में जाके सुदामा के पास गए और तुरंत ही आलिंगन पकड़ लिया उनको। आलिंगन करते प्रेमा से उनके बहने लग गए बहुत, और पूरे आश्रम से उनका उन्होंने अभिषेक कर दिया सुदामा ब्राह्मण का। और रुक्मिणी देखने लग गई, अरे ये कौन है, इसकी हड्डी पसली सब दिख रही है, ऐसा ब्राह्मण कोई अच्छे घर से भी नहीं दिख रहा है, कपड़े फटे हुए है इसके, और ये भगवान जो है कृष्ण जो है इन लोगों को द्वारकाधीश है, ये उनको जाके आलिंगन दे रहे हैं, मैंने कभी इनके बारे में कौन है। तो कृष्ण तुरंत बोलते हैं रुक्मिणी जानती हो ये कौन है? तो रुक्मिणी तुरंत बोलती है यस यस हाँ मैं तो जानती हूँ, सही में हाँ मैं जानती हूँ, आप शायद इसी की बात कर रहे थे मेरे साथ जो सुदामा जो आपका मित्र है। तो कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं और सुदामा उससे भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मुझे भूले नहीं है कृष्ण अभी तक। तो कृष्ण बाद में उनको लेके जाते हैं अपने घर में, लेके जाते हैं घर में नहीं महल में लेके जाते हैं, वहाँ पे सोने के शैया पे बिठाते हैं, अपनी गद्दी पे बिठा कर उनके चरण कमल धोते हैं ब्राह्मण के। और रुक्मिणी पीछे से पानी देती है भगवान को, चावल डुलाती है, अलग अलग व्यंजन पकवान बनाते हैं और खिलाते हैं, तो जो द्वारकावासी जो होते हैं वो सब देखते रहते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, कौन है, कहाँ से आया है। सब उनका आचार कुशल मंगल होने के बाद जब वो देखता है कि सुदामा के पास कुछ तो रखा हुआ है, हाँ, उसमें जो पोहा चिप राइस, हाँ, जो रखा हुआ रहता है, सुदामा डरता है थोड़ा, बोले अरे इतना सारा फीस्ट कृष्ण को हर रोज मिलता है, अगर ये पोहा मैं इसको खिला दूंगा तो कैसे हो जाएगा, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो कृष्ण तो जानते हैं, सुरुद है, वो जानते हैं कि सुदामा के पत्नी ने इनको मेरे लिए पोहा भी बना के दिया है खाने के लिए, तो वो निकाल के बोलते क्या छुपा के रखा है बताओ, तो वो खोल के दादा नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, तो बोलते नहीं नहीं दो, और खाना चालू कर देते वो, और उसके आंखों से आंसू आते हैं, बोलते कितना सुंदर है, आपको अभी भी याद है कि मुझे बचपन में पोहा बहुत पसंद था चिप्ट राइस। और वो रुक्मिणी देवी बोलते आप ही अकेले खा लेंगे क्या, हमें भी दो कुछ, वो हाथ से छीन लेते भगवान के, और वो भी खाती है और प्रेमाश्रु बहाते हैं दोनों भी। तो उसके बाद जब उनका बिछड़ने का टाइम आ जाता है, बोलता है सुदाम बोलता है अभी मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे फैमिली उधर राह देख रही होगी। कृष्ण जान जाते हैं सभी मन में, सुदामा वहां पर आता है, सोचता है कि मैं मांगू कैसे, भगवान को कैसे मांगू, भगवान इतना प्रेम करते हैं, भगवान से तो मैंने कुछ भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, ये गलत बात है, ये भक्ति नहीं है, तो इसलिए कुछ मांगते नहीं है, लेकिन भगवान सब समझ लेते हैं उसकी सब बातें। और जब सुदामा वापस जाते हैं, जाते जाते उनके मन में इतना खुशी होता है कि मैं तो भगवान को मिला था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, भगवान मुझे भूले नहीं है, भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं, उसे उसका और जो हृदय हो गदगद हो जाता है, आंसू आते रहते हैं, और दूसरे सब और थोड़ी चिंता होने लगती है उसको कि अरे अभी मैं घर पे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, हाँ घर पे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, ये जो भगवान है उनके पास मैं गया था, उनको तो कुछ मांगा नहीं मैंने, और अपना हटिया का जो छोटा झोपड़ी है तो ऐसे ही रहेगा, कपड़े फटे हुए हैं, मैं कुछ लेके नहीं आया हाथ में, अभी क्या होगा। सोचते सोचते चिंता करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए घर पे कैसे भी पहुंच जाता है, और जैसे पहुंचता है तो देखता है बहुत बड़ा गार्डन बन गया, बगीचा है, राजहंस और अलग अलग अच्छे तरह करबंद और मोर ऐसे वहां पे सैर कर रहे हैं, और बड़े बड़े तालाब है, और वहां पे झरने हैं, और वहां पे बहुत बड़ा महल है। तो अरे मैं तो गलती से यहाँ पे आ गया, मेरा घर कहीं और है, मुड़ता है और दूसरी ओर जाने लगता है, तो पीछे से उसके पत्नी की आवाज आती है, बोलते जी कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ। तो सो जाता है कि वो पत्नी के साथ इतना अलंकृत, इतने अच्छे गहने, इतना अच्छे कपड़े होते हैं उनके, बोलते आप कौन है। वो समझता नहीं, वो अपनी पत्नी कहते, बोलते मैं आपकी पत्नी हूँ, भूल गए क्या, बोलते कहाँ से आ गया, इतना बड़ा बाग बगीचा, इतना महल, आपके कपड़े, तुरंत जोटे बच्चे आते हैं उसके सुदामा के, और वो पापा पापा या पिताश्री पिताश्री बोल के पकड़ लेते हैं, तो आप ऐसा कैसा हो गया सब कुछ, वो एकदम अचंभा हो जाता है। तो तुरंत ही जो भक्त होते भगवान को याद करते हैं, जो अच्छा हो या बुरा हो, तो बोलता है याद कर लेते हैं, हाँ बोलते अभी याद आया मुझे, तो भगवान को मैंने पोहा खिलाया था, तो भगवान सब समझ में आ गया, भगवान को, भगवान अंतर्यामी है, वो सुरुद है सबके, उनको समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए था, मैं किस भाव से गया था, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन भगवान जो मेरे हृदय में स्थित है वो जान गए कि मैं किस चीज के लिए उनके पास आया था, उन्होंने मुझे बिना मांगे दे दिया सब कुछ। और ऐसे होने के बाद जो उनके साथ बैठते हैं और पूरी चर्चा करते हैं कि कृष्ण कहने कृष्ण ने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया, और कृष्ण ने बचपन के पाप जो सब लीलाएं सब बताते रहते सुदामा, और ऐसे बोलते बोलते वो उनके दिन चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भक्त ने भगवान को कुछ मांगा नहीं है, लेकिन भगवान ने सब कुछ पूर्ति कर दिया। यह है भक्त वत्सल भगवान, इस भगवान की सुहृदता जो है, तो इसलिए हम भक्तों को इस बात का हमेशा चिंतन होते रहना चाहिए। हमें नहीं समझ में आया तो भी बारंबार हमको प्रयत्न करना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन का चरम लक्ष्य यही है कि ये बात समझना। भगवान की शरणागति भक्त के समूह में, खास करके हम मंदिर में रह के दो बात, तो हम शरणागति के दो अंग तो हम बहुत अच्छे तरह से फॉलो कर लेते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, क्योंकि अनुकूल ये सब कुछ चीजें, यहाँ पर मंगल आरती है, भागवतम है, प्रसाद है, संघ है, इवनिंग आरती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सेवाएं है, व्यवस्थापन है, फूल की बाहर की सेवा है, चामर सेवा है, सब सेवा ही सेवा है, सभी कुछ अनुकूल है। कुछ नहीं चाहते हो कि सब कुछ अनुकूल चीजें हमारे से हो जाती है। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो दूसरी चीजें जो मिलती नहीं है, तांबा लहसुन प्याज मांस मच्छी दारू, ये कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली फॉलो होती है हरे कृष्णा मंदिर में रहने के बाद। लेकिन रक्षति यदि विश्वास हो, भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास हमें जब आता है, जो विश्वास को हम दृढ़ करने का प्रयास करते हैं, तो ये एक शरणागति का तीसरा अंग हम हमारे जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। गोपतृप्ते वर्णम सदा, भगवान जो है सभी के मेंटेनर है, सभी के पालन करने वाले हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य क्या बोलते उसको, सब तरह की शरणागत भाव जो है आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, भूल रहा हूं मैं उसका मीनिंग, तो ये सब चीजें जब समझ आए छठ विदा शरणागति, तब हमारी शरणागति संपूर्ण होगी और भगवान जो हमारे साथ आदान प्रदान पूरी तरीके से हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजामि। तो यहाँ पे जो दिशापाल थे, उनको शासक थे, उनको पहले किसी और की शरण ढूंढते ढूंढते गए, लेकिन किसी और की शरण न मिलने के कारण अंततः तो भगवान के पास गए, तो वो बुरी बात भी नहीं है। शास्त्र में बताया गया है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। कुछ भी इच्छाएं हो भक्ति में लगे रहो और अनन्य भाव से भक्ति करने का प्रयास करो, तो हमें भगवत भक्ति जरूर प्राप्त होगी, भगवान की कृपा जरूर होगी, श्री राधा माधव की कृपा होगी। तो यही हम आज चर्चा करने का प्रयास किए। बोलने के लिए तो बहुत शरणागति के ऊपर हमने बोल दिए हैं, लेकिन जो आचार्यों से सुने हैं और प्रभुपाद जी के ग्रंथ से जो सुने हैं वही दोहराने का प्रयास किए। व्यक्तिगत रूप से बहुत हम लैक करते हैं इस चीज़ों का प्रयास कर फॉलो करने के लिए, तो आप सब प्रार्थना कीजिए कि इस चीज़ को हम हमारे जीवन में भी उतारे अच्छे से। हरे कृष्णा। कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न?
आपने बताया कि जब हम कृष्ण का शरण लेते हैं तो हमारा जो भय है वो दूर हो जाता है, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड जो वैष्णव फॉलो करते हैं वो ये होता है कि हम अपना प्रयास जारी रखते हैं और एट द सेम टाइम वी टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड।
यस।
सो डज दिस मीन दैट हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन वी आर डूइंग आवर एंडेवर पार्ट एंड दैट शोज दैट यू नो like we are fearful also of the situation, so when we do our part because we don't have sufficient faith on Krishna, so that fear carelessness doesn't come, so we can say both like doing the our part, working hard to get out the situation, at the same time depending on the Lord, but result is not that carelessness doesn't come, we are still fearful.
Inka prashna hai ki hum jab bhi prayas karte hain to prayas karte samay भगवान पर निर्भर होना बहुत कठिन जाता है, तो क्या समझे वैष्णवता में तो हमें ये समझते कि प्रयास भी करना चाहिए भगवान का भी निर्भर होना चाहिए, तो ये कैसे समझे इस बात को? तो इस बात की जड़ स्थिति जड़ कारण ये हो सकता है कि हम हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान से अलग समझते हैं। भगवान से अस्तित्व अलग समझने के कारण हम भगवान के ऊपर निर्भर रहने का थोड़ा डरते हैं। अगर हम इस बात का समझ में आए कि हम अंश है, ममय वांश जीवलोके जीव भूत सनातन, जैसे छोटा बच्चा जो है वो समझता है माता पिता का मैं अंश हूं, यही मेरे सब कुछ पालन हालन वाले हैं, तो उनको कुछ तकलीफ दे तो वो साथ में चिल्लाते थे माँ पिता ऐसे चिल्लाते भी है और साथ में कार्य भी करते रहते कुछ। तो अगर हमें भगवान के शाश्वत दास होने का अगर हमें एक अनुभूति हो जाए तो हम हमारे कार्य भी करते रहेंगे, प्रयास भी करते रहेंगे और भगवान के ऊपर निर्भर भी रहेंगे। जनरली हम प्रयास हमारे खुद के प्रयास समझते हैं क्योंकि हम भगवान से स्वतंत्र आइडेंटिटी रखते हैं, वी कीप आवर आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड, देयरफॉर दैट फियर कम्स कि अभी क्या होगा, वो आएंगे क्या नहीं आएंगे, जब हम एक ही है तो क्या प्रॉब्लम है, तो आने ही है उनको। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।